पृष्ठ संख्या 60। भारत अपने ही कुछ लोगों की दगाबाजी और विश्वासघात के कारण गुलाम हुआ। सिंध में आक्रमण के समय मोहम्मद बिन कासिम, जो राजा दोहर का कमांडर था, उसने आक्रमणकारियों से रिश्वत लेकर दाहर की ओर से लड़ने से मना किया। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने का न्योता दिया और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ाई में गौरी की मदद की। जब शिवाजी हिंदुओं की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो सोलंकी राजे, कुछ मराठे सरदार, राजपूत राजे मुगलों की ओर थे। सिखों पर जब अंग्रेजी हमला हुआ, तो उनका सेनापति खामोश बैठ गया और सिख राजा गुलाब सिंह हार गया। 1857 में लगभग भारत के बहुत बड़े हिस्से में आज़ादी की जंग हुई, तो सिख चुपचाप बने रहे। क्या इतिहास फिर दोहराया जाएगा? मुझे यह बात और भी चुभती है कि पुरानी जाति व्यवस्था की तरह अनेकों राजनीतिक शक्तियां जन्म ले रही हैं। क्या भारतीय लोग देश को इन जातियों और दलों से ऊपर समझेंगे? किंतु यदि दलों ने अपने वंश को देश के ऊपर रखा, तो देश की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी और हमेशा के लिए देश खत्म हो जाएगा। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से देश को बचाना है। हमें अपने खून की अंतिम बूंद से देश की आज़ादी की हिफाजत करनी है। 26 जनवरी 50 से हमारे देश में जनता द्वारा जनता के लिए एक सरकार हो जाएगी, तो इस देश के लोकतांत्रिक संविधान की क्या हालत होगी? क्या वह संविधान की रक्षा करेगा या इसे ध्वस्त करेगा? इस प्रश्न से मैं काफी चिंतित हूँ। ऐसा नहीं कि भारत को लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। एक समय था जब भारत में केवल गणराज्य थे, जहाँ कहीं राजा थे वे भी या तो चुने हुए थे या उन पर कठोर नियंत्रण थे। ऐसा नहीं कि भारत को संसद अथवा संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था। बौद्ध भिक्षुक संघ के एक अध्ययन से पता चला कि भारत में संघ अथवा संसदें थीं, उनके संचालन के नियम थे, उनमें बैठने के नियम थे, प्रस्ताव करने के नियम, प्रस्ताव, कोरम, द्वीप, ब्रैकेट में निर्देश, ब्रैकेट क्लोज, वोटों की गणना, मतदान पद्धति, अविश्वास प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि पूरी पद्धति प्रचलित थी। यह सभी बुद्ध द्वारा संघों की बैठकों में अपनाए जाते थे। उनके समय प्रचलित नियमों को हमने अपनाया। यह संसदीय पद्धति भारत में नष्ट हो गई थी। अब क्या हम इसे दोबारा नष्ट करेंगे? यह भारत जैसे देश में ही संभव है, जहाँ लोकतंत्र बहुत प्रारंभ में था, वहीं उसे नई व्यवस्था करके कहा जा रहा है। यहाँ लोकतंत्र के ही गर्भ से तानाशाही के पैदा होने का खतरा मौजूद है। यह पूरा संभव है कि हम लोकतंत्र का ढांचा तो बचा के रखें, लेकिन उसी में तानाशाही जन्म ले ले। यदि व्यवस्था का क्षरण हुआ, तो दूसरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि हमें वस्तुतः लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रथमतः हमें अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक रास्तों को ही अपनाना चाहिए। हमें खूनी संघर्ष से क्रांति के रास्ते को छोड़ देना चाहिए। हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के रास्ते का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक रास्ता न बचे, वहाँ असंवैधानिक मार्ग से चलने का पूरा औचित्य है। ये रास्ते तो अराजकता के व्याकरण हैं। जितना जल्दी हम उस रास्ते को भूल जाएं, उतना ही अच्छा रहेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र के प्रहरियों से कहा, कभी किसी बड़े आदमी के चरणों में अपनी आज़ादी को समर्पित न करो, क्योंकि जिससे वह तुम्ही से ताकत लेकर व्यवस्था को नष्ट कर दे।